नमस्कार। 2001 से आज तक महाराष्ट्र अलोन, सिर्फ महाराष्ट्र में तकरीबन 24,315 किसानों ने आत्महत्या की, और अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट की माने तो 62% लोग आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि उनको, उनके परिवार को दो स्क्वायर, दो वक्त की रोटी वो जुटा नहीं पाए। खेतों में लॉस हुआ, खेतों में नुकसान हुआ, और उनके बच्चों को दो वक्त की रोटी खिलाने के वो काबिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। सर पे कर्ज का बोझा था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। गवर्नमेंट की माने तो ये लॉस इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रांत में रहते थे, वहां सूखा पड़ा था या बाढ़ आई थी। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सूखा पड़ना या बाढ़ आना, ये क्या सिर्फ महाराष्ट्र में या भारत में होता है? क्या चीन में सूखा नहीं पड़ता? क्या नेपाल में सूखा नहीं पड़ता? क्या बांग्लादेश में सूखा नहीं पड़ता? क्या ऑस्ट्रेलिया में सूखा नहीं पड़ता? क्या ब्राजील में सूखा नहीं पड़ता? अगर ब्राजील में सूखा पड़ता है, अगर चाइना में सूखा पड़ता है, अगर श्रीलंका में सूखा पड़ता है, तो ऐसा क्यों है कि वहां के किसानों को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती, पर हमारे किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है? इसका रीजन क्या है? हमारे किसान आत्महत्या इसलिए करने में मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को उनका प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, अगर समझ में आया तो कैसा सॉल्यूशन देना है यह उनको नहीं आता। हमारे गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री चलाने नहीं आती, इसके कारण हमारे किसान मरते हैं, ना कि सिर्फ सूखा या बाढ़ के कारण। मैं जो बोल रहा हूं उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। हम जब किसानों का इनकम देखते हैं तो हम किसानों का इनकम एक साल के लिए देखते हैं, जैसे हम हमारा इनकम देखते हैं, एनुअल इनकम देखते हैं। टेक्निकली पहली बात तो किसानों का इनकम एक वर्ष के दायरे में हम नहीं देख सकते, हमको किसानों का इनकम 5 वर्ष के दायरे में देखना पड़ता है। मैं टेक्निकली बताता हूं क्यों। क्योंकि जब एक किसान अपना खेत जोतता है, 5 साल में तकरीबन 1 या 2 साल, मोर ऑफन देन नॉट 2 साल उसको सूखा या बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो उसका इनकम जो है उसको 5 साल में आपको डिवाइड करना पड़ता है, और 5 साल में डिवाइड करके आपको यह पता चलेगा कि वो 1 साल में कितना कमाता है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज किसान को हमारे देश में सालाना इनकम 77,000 रुपीज है। यह तकरीबन 2015 का डेटा है, 77,000 रुपीज है। मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूं फिगर, एग्जैक्ट फिगर है 77,888, चलो 80,000 पकड़ते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे किसान को 80,000 रुपए 1 साल का उनका इनकम है, 80,000 रुपए 1 साल का उनका इनकम है। अगर उनका इनकम 80,000 रुपए 1 साल का है तो हम यह कैलकुलेट करेंगे कि 5 साल के दौरान उनको 3 बार 80,000 रुपए 80,000 रुपए 80,000 रुपए, यानी कि 2,40,000 रुपए का उनको आमदनी होगा 5 सालों में, बिकॉज 1 साल हम सूखा और हम बाढ़ के वजह से उनका इनकम को 0 कंसिडर करेंगे। अगर उनका इनकम 2,40,000 रुपए होता है तो उनका पर माह इनकम जो है वो 4,000 रुपए और पर दिन का इनकम 130 रुपए होगा 5 सालों के लिए। तो अगले 5 सालों के लिए उनको 130 रुपए पर डे के इनकम में या 4,000 रुपए पर माह के इनकम में उनको उनका घर का खर्च, उनको उनके कपड़े लत्ते, उनका खाना पीना, उनका फर्टिलाइजर, उनका खत, उनका सीड्स, उनका ट्रैक्टर, उनका डीजल, उनका इलेक्ट्रिसिटी, उनका वाटर, ये सब कुछ जो है 130 रुपए के आमदनी में उनको चलाना पड़ता है। चलो आप आगे चलते हैं। महाराष्ट्र जैसे जगह में चांसेस ये है, महाराष्ट्र जैसे जगह में चांसेस ये है कि नॉर्मली 5 सालों में कभी कभी 3 साल उनको सूखा या बाढ़ का सामना करना पड़ता है, ज्यादातर के सूखा। 1,60,000 रुपए 5 साल के लिए उनका पर मंथ का जो पर माह का जो इनकम है वो घटके 2,700 रुपए हो जाता है, पर दिन का इनकम 86 रुपीज हो जाता है। अब 86 रुपीज में उसको अपना घर का खर्च, अपना कपड़े लत्ते, खाना पीना, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोल, ट्रैक्टर, सब कुछ ये 86 रुपीज में उसको निभाना पड़ता है, और तब जाके इंसान को खाने के लाले पड़ते हैं, और तब जाके किसान अपना जान ले लेता है, क्योंकि उसके पास कुछ बचता नहीं है। वो अपना घर चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो लोन लेने चालू करता है, वो उधार लेने चालू करता है, और उधार ले लेके वो ऐसे एक कटघरे पे आता है, ऐसे एक कटार पे आता है जो वो उधार चुका नहीं सकता, और वो उधार ना चुकाने के कारण वो अपनी जान ले लेता है, और वो अपनी परिवार की जान ले लेता है। ये है सच, और इसका रीजन क्या है? और मैं क्यों बोल रहा था कि गवर्नमेंट को यह नहीं समझ में आता कि किसान एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री कैसे चलानी चाहिए, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं? पूरे विश्व में अगर हम किसानों का आमदनी अगर देखें, किसानों का प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो किसानों का प्रॉफिटेबिलिटी सालाना 75% से लेकर 125% तक होता है। लेकिन भारत में, हमारे देश में, किसानों का प्रॉफिट सालाना 20% से लेकर 35% तक होता है। 20% से लेकर 35% के प्रॉफिटेबिलिटी में एक किसान को अपना आमदनी कमाना पड़ता है, और वो आमदनी वो लिटरली 5 साल चलाना पड़ता है। अब यही किसान जिसका आमदनी 80,000 रुपए, अगर उसका आमदनी साल का 3 लाख रुपए होता, 3 लाख रुपए अगर आमदनी होता, तो अगर वो 2 साल अगर अच्छा फसल वो प्रोड्यूस कर सकता था, और बाकी 3 साल में अगर वो बाढ़ या सूखा पड़ता था, तो भी वो अपनी जिंदगी जी ले लेता। लेकिन 80,000 रुपए और 25% प्रॉफिट्स में वो नहीं जी सकता। हमारा गवर्नमेंट क्या करता है? हमारा गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले उसका 1 साल का लोन माफ कर देता है, वो भी एक्चुअली उसको कभी होता नहीं है, पर उसका लोन माफ कर देता है। एक लोन माफ करने से उसकी जिंदगी बनेगी, वो 1 साल और चला लेगा अगले साल। पर हमारे कोई भी गवर्नमेंट ने ये उसको कभी नहीं बोला कि हम आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, हम आपका प्रॉफिटेबिलिटी 20% से लेकर 20% से लेकर के आपका प्रॉफिटेबिलिटी 75% तक लेके जाएंगे। ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ता है? पहली बात, इनपुट कॉस्ट। एक किसान जो टमाटो बेचता है, जो टमाटर बेचता है, उसका आउटपुट कॉस्ट, उसका सेल प्राइस जो है वो मार्केट डिसाइड करती है, वो उसको कोई हक नहीं रहता, उसका सेल प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। पर उसका इनपुट प्राइस भी मार्केट ही डिसाइड करती है। खत कितने में खरीदता है, फर्टिलाइजर कितने में खरीदता है, पेस्टिसाइड कितने में खरीदता है, इंसेक्टिसाइड कितने में खरीदता है, हर्बिसाइड कितने में खरीदता है, ये मार्केट तय करती है। उसको मार्केट से एमआरपी के प्राइस में खरीदना पड़ता है, और वो मैन्युफैक्चरर तय करती है, वो उसको तय करने का कोई हक नहीं होता है। भारत में जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका प्रॉफिटेबिलिटी 40-50-70% प्रॉफिटेबिलिटी में वो किसानों को माल बेचता है, और इसका मैं आपको पुरावा भी दे सकता हूं, इसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं। किसान भारत में 25,000 किसान महाराष्ट्र में अलोन मरे हैं। लेकिन आपको यह जानकर शायद खुशी या दुख होगा कि जो कंपनीज हैं, जो एग्रीकल्चरल कंपनीज हैं, वो सालों साल उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। यूपीएल ग्रुप लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी 14% बढ़े, गारदा ग्रुप प्रॉफिटेबिलिटी 15% बढ़े, इंडोफिल इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी 23.3% बढ़े, भारत ग्रुप 30.9% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। जो कंपनियां किसानों को अपना माल प्रोवाइड करती है, जो वेंडर है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 30% 25% 17% 40% बढ़ रही है, और जो किसान है वो मर रहे हैं। वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो लॉस में, कर्ज में दब के मर रहे हैं। अब आप ये सोचे कि कार कंपनी में, कार कंपनी का टायर देने वाला रिच होते जा रहा है, पैसे कमाते जा रहा है, और जो कार मैन्युफैक्चर कर रहा है वो गरीब डूब के मर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? जो टायर बनाता है वो पैसा कमाता है, लेकिन जो कार बनाता है वो डूबता है। टायर कार के लिए बनता है, लेकिन हमारे देश में हमारे किसानों के साथ यही हो रहा है। किसान मर रहे हैं, और जो किसानों को प्रोवाइड कर रहा है वो ड्राइवर जो है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी किसान का माल लेके जाता है, वो भी पैसे कमाता है, लेकिन किसान जो है वो पैसे नहीं कमाता। क्योंकि किसान को इनपुट्स वेंडर्स भी लूटता है, जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, खत प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है, वो भी लूटता है, और जो उनसे माल खरीदता है वो भी लूटता है। तो इनपुट कॉस्ट में किसानों को, गवर्नमेंट को चेक रखना चाहिए। एटलीस्ट किसानों को यह समझना चाहिए कि अगर वो एक हर्बिसाइड का डब्बा खरीदता है या एक फर्टिलाइजर खरीदता है तो उसमें मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कितना है, ये एटलीस्ट किसानों को समझना चाहिए। फिर उसको डिसाइड करने दो कि उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कि कोई और ब्रांड खरीदना है। ये एक। दूसरा, सांगली और मुंबई में 400 किलोमीटर की दूरी है। सांगली में 1 किलो अगर खेत में जाओ, अब किसानों के पास जाओ, 1 किलो ग्रेप्स, द्राक्ष का भाव 45 रुपया है, मुंबई मार्केट में उसको 175 रुपये में बेचते हैं। 45 रुपया जो किसान बेचता है, और मुंबई 400 किलोमीटर के डिस्टेंस में 45 रुपया 175 रुपया होता है। मुझे बताएं, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा इंडस्ट्री है? टोयोटा का कार टोयोटा मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में करता है और डीलर 400 रुपए में बेचता है, क्या ये ऐसा होता है? वोडाफोन खुद अपना या नोकिया या मोटरोला अपना फोन 1000 रुपए में बनाता है और डीलर 15000 रुपए में बेचता है, ऐसा क्या ये होता है? क्या कोई भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर से ज्यादा रिटेलर कमाता है? एग्रीकल्चर में कमाता है, एग्रीकल्चर में होता है। जब ये इंडस्ट्री में ऐसा होता है तो आप सोचे, एक किसान पैसे कैसे कमाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे करेगा, वो अपना जीवन कैसे गुजारेगा, और ये इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैसे फले फूलेगा? क्योंकि सबसे कम जो है आज किसान कमाता है, किसान से ज्यादा तो वो ट्रांसपोर्टर कमाता है, जो उसका माल लेके उसके गांव से लेकर जो है शहर में लेके आता है, वो ट्रांसपोर्टर उससे ज्यादा पैसे कमाता है, वो सबसे कम पैसे कमाता है। एक साल वो मरता है, लेकिन सबसे कम पैसे वो कमाता है। वो कहां से पैसे कमाएगा, वो कहां से अपना जीवन जिएगा? गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए, मिडिलमैन को उठा के बाहर फेंकना चाहिए। 90% मिडिलमैन, मैं ये भी आपको बोल दूं, 90% का मिडिलमैन जो है वो पॉलिटिशियन ही है, पॉलिटिशियन ही ब्रोकर है। सबसे ज्यादा पैसे जो किसानों के खून से कमाता है वो आज पॉलिटिशियन कमाता है। तो सबसे ज्यादा ब्रोकर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पॉलिटिशियंस है। पहले ये ब्रोकर बंद करना चाहिए। एक, इनपुट कॉस्ट, दूसरा ब्रोकर्स, तीसरा भारत सरकार को हमारे किसानों को अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनली बेचने को मदद करनी चाहिए। यह भारत सरकार का फर्ज है कि वो हमारे किसान का माल वो खुद उनके मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू, उनके काउंसलेट नेटवर्क के थ्रू, उनके ट्रेड नेटवर्क के थ्रू इंटरनेशनली उसको मुहैया किया जाए, उसको अवेलेबल किया जाए। हमारे किसानों का माल जो है दुबई से लोग लंदन में एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे किसानों से बहुत कम प्राइस में वो खरीद करके दुबई में बेचते हैं और दुबई में दुबई का स्टैंप डाल के वो लंदन में बेचते हैं। किसानों को कुछ नहीं मिलता, जो पैसे हैं वो जाता है ब्रोकर के पॉकेट में। ये पूरे एडिटोरियल से मैं यही बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट किसानों को सब्सिडी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का पाठ पढ़ा है। सब्सिडी देकर नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी दिलाकर किसानों को बड़ा करें। सब्सिडी ये एक शॉर्ट टर्म मेथड है। सब्सिडी से कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बड़ा नहीं होने वाला, प्रॉफिटेबिलिटी से होगा। अगर गवर्नमेंट को किसानों का सही में भला सोचना है तो गवर्नमेंट को किसानों के लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी मार्क यह निकालना होगा, सब्सिडी नहीं। नमस्कार।